नमस्कार, मैं हूं राजीव। दोस्तों, बीमारी चाहे बड़ी हो या छोटी, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए, ना कि किसी बाबा की बातों में आकर उसकी जेब पैसों से भरनी चाहिए। ऐसा ही कुछ आपने मैं कुछ भी कर सकती हूँ के पिछले एपिसोड में देखा होगा। तो आइए इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ की 17वीं कड़ी। अर्जुन आशिमा को उसका जन्मदिन मनाने के लिए बुलाता है। इन्हीं बातों में वो आशिमा को अपने बिजनेस की सभी जिम्मेदारी सौंप देता है और बताता है कि वो स्नेहा के साथ प्रतापपुर में ही लोगों की मदद करेगा। आशिमा उदास हो जाती है कि अर्जुन अब उससे दूर हो जाएगा। इसी के बीच स्नेहा अर्जुन से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसे फोन करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो आशिमा का जन्मदिन मना रहे हैं तो स्नेहा अर्जुन को बाद में फोन करने का वादा करती है। इधर प्रतापपुर में दिगंबर गुस्से से लाल मधोक और दूसरे पुलिस कर्मियों की शिकायत लिखवाने आता है। वो पूछता है कि पुलिस ने जो उसके दफ्तर में छापा मारा था उसका क्या कारण था। इस पर मधोक बोलते हैं कि दिगंबर, ये तुम्हें उसी दिन पूछना चाहिए था, और वो छापा नहीं था, पुलिस की तहकीकात थी। इस पर दिगंबर इंस्पेक्टर मधोक से पूछता है कि आखिर वो किस बात की तहकीकात थी। मधोक उन तीनों आरोपी लड़कों को बुलाते हैं और बताते हैं कि इन तीनों आरोपियों ने तुम्हारे खिलाफ लिखित में बयान दिया है कि तुम किस तरह से लोगों को कर्ज देने की आड़ में उन्हें लूटते हो, उन्हें बेवकूफ बनाकर कैसे उनके घर और उनके जमीन पर कब्जा करते हो। इस पर दिगंबर बोलता है कि वो भी जानता है कि किस तरह से ऐसे बयान लिए जाते हैं। वो तीनों आरोपियों से कहता है कि वो अदालत में ये कहें कि ये बयान उनसे जबरदस्ती लिखवाया गया है। दिगंबर इंस्पेक्टर मधोक को धमकी देता है कि वो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मधोक कहता है कि वो चाहे तो धमकाने के आरोप में इसी वक्त दिगंबर को जेल में बंद कर सकता है। दिगंबर कहता है कि खेल की शुरुआत मधोक ने की है, लेकिन अंत वो करेगा। यहां प्रताप वाणी पर बुआ जी और मुन्ना अपना रेडियो कार्यक्रम चला रहे हैं। एक श्रोता श्यामलाल शौचालय निर्माण पर अपनी बात रखने के लिए रेडियो पर फोन करता है। श्यामलाल मानता है कि शौचालय बनाना एक अच्छा काम नहीं है और ये हर किसी के लिए नहीं बना, पर डॉक्टर स्नेहा ने सभी को इस काम में लगा दिया है। बुआ जी इस बात से हैरान है कि कितनी ही बार वो शौचालय और उसके निर्माण के बारे में बता चुकी हैं, लेकिन तब भी श्यामलाल जैसे कुछ लोग इसे समझते ही नहीं। इसी बीच मुन्ना के फोन पर एक तस्वीर आती है। ये शौच करते हुए बाबा पहलवान के पीछे से खींची गई तस्वीर है। मुन्ना इस तस्वीर को नाम देता है पिछल्फी। जिस तरह आगे से ली गई तस्वीर सेल्फी होती है, वैसे ही पीछे से ली गई तस्वीर पिछल्फी है। पिछल्फी एक कोशिश है एक गलत सोच को बदलने की, एक ऐसी सोच जिसका बुरा असर लगभग सभी पर पड़ता है। बुआ जी रेडियो पर श्रोताओं को कहती है कि अगर बाबा पहलवान खुले में शौच की आदत बदल लेते हैं तो ये तस्वीर हटा दी जाएगी, वरना आज शाम गांव की संगीत सभा में ये सभी को दिखाई जाएगी। उधर गांव की राधा बहन बाबा पहलवान के पास आती है और बाबा की दी दवाई की पुड़िया उनकी तरफ फेंक कर बोलती है कि अपनी दवाई रखो अपने पास और हमें हमारा पैसा वापस करो। बाबा पहलवान बोलता है, देखो खुद को, इस पुड़िया से ही तुम ठीक हुई हो। राधा बताती है कि वो किसी पुड़िया से नहीं बल्कि डॉक्टर स्नेहा की दी दवाई से स्वस्थ हुई है। ये सुनते ही बाबा पहलवान गुस्से से लाल हो जाता है और राधा को धमकाता है कि उसे पैसा तो नहीं मिलेगा, और अपने आदमी से बोलता है कि राधा को धक्के मार कर यहां से बाहर निकालो। तभी इंस्पेक्टर मधोक वहां आ जाते हैं और बाबा पहलवान से पैसे वापस लेने की मांग रखते हैं। मधोक बोलते हैं कि तुमने हमें भी एक दफा पुड़िया दी थी, वो किसी काम की नहीं थी, तो पुड़िया को अपने पास रखो और उसका पैसा वापस कर दो। बाबा पहलवान समझ जाता है कि ये सब मधु की साजिश है। वो राधा के पैसे वापस कर देता है, लेकिन इंस्पेक्टर मधु के पैसे वापस करते वक्त बोलता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पर मधुक बोलते हैं कि तुम अपनी चिंता करो, जल्द ही राधा की तरह बाकी गांव वालों को भी तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी, तब तुम्हारा क्या होगा। इधर माथुर निवास में बाबूजी बड़ी खुशी से स्नेहा के पास आते हैं और बोलते हैं कि भोपाल से तुम्हारी माँ का फोन आया था और तुम्हारे काम की काफी तारीफ कर रही थी। वो करवा चौथ पर यहाँ आ रही है, तो तुम भी अस्पताल से थोड़ा जल्दी आ जाना। करवा चौथ की बात सुनकर स्नेहा बोलती है कि बाबूजी, करवा चौथ में भी समानता होनी चाहिए। अब जैसे कोई पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, तो वैसे ही पति को भी अपनी पत्नी के लिए व्रत तो रखना ही चाहिए। स्नेहा की ऐसी सोच सुनकर बाबूजी मुस्कुराते हैं। तभी उन्हें एक फोन आता है और फोन सुनने के बाद वो थोड़े परेशान से हो जाते हैं। स्नेहा के पूछने पर बाबूजी बताते हैं कि दिन में 3 दफा फोन आ चुका है। कोई है जो बोलता है कि स्नेहा को बाबा पहलवान और दिगंबर के रास्ते से हट जाना चाहिए। इस पर स्नेहा बोलती है कि वो इन धमकियों से डर कर पीछे नहीं हटेगी। बाबूजी अभी भी गंभीर है, स्नेहा को थोड़ा सावधान रहने को कहते हैं।